दूसरा इतिहास अध्याय 21, अध्याय 21 पद 1 से लेकर 6 तक। निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके भाई जो यहोशापात के पुत्र थे, अन्य भाइयों के नाम ये थे, अजरिया, यहीएल, जकरिया, मिकाएल और शबताया। ये सब इसराइल के राजा यहोशापात के पुत्र थे और उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़ वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज्य दे दिया क्योंकि वो जेठा बड़ा पुत्र था। पद 4, जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इसराइल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। जब यहोराम राजा हुआ तब वो 32 वर्ष का था और वो 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वो इसराइल के राजाओं, उत्तरी राज्य के दुष्ट राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी और वो उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहोशापात की मित्रता और मेल जो उसने इसराइल के राजा से किया, उसने मुसीबत खड़ी कर दी। एक बार जब वो आहाब से मिलने इसराइल गया तो अपने पुत्र यहोराम को भी साथ ले गया था। उसने आहाब की पुत्री को देखा और प्यार कर बैठा। वास्तव में वे मेल बढ़ाना चाहते थे, इसलिए दोनों राजा विवाह के लिए सहमत हो गए और यहोशापात ने अपने पुत्र यहोराम का विवाह दुष्ट राजा आहाब की पुत्री से कर दिया, जो इजेबेल की भी पुत्री थी, और इसलिए उसने भी अपने पति यहोराम पर नियंत्रण रखा और इजेबेल ने आहाब पर रखा था ये नियंत्रण राज्य पर दुष्ट प्रभाव डालता था। यहां ऐसा हुआ मानो पिता कहता हो, मैं जाऊंगा और मुझे कुछ न होगा, मैं जानता हूं कि कैसे स्वयं को बचाऊं और राजा मुझे छू भी ना सकेगा। परंतु उसका पुत्र जो उसके साथ गया, वो संबंध बनाने की लालसा में फंस गया। इसलिए हमें संबंध बनाने में सावधान रहना चाहिए, अपने ही प्रति नहीं, दूसरों के प्रति भी। हो सकता है आप तो स्थिति को संभाल लें, पर आपका परिवार हानि उठा सकता है, वे परिस्थिति को शायद संभाल ना पाए। यदि वो वहां ना जाता और उसे मेल के कारण आहाब के साथ ना ढूंढता, तो निश्चय ही उसका पुत्र कभी आहाब की पुत्री अतलिया से ना तो मिलता और ना विवाह करता, और ना ये भयानक स्थिति उत्पन्न होती कि शासन के लिए सब भाइयों को मार डाले। ये उसकी पत्नी दुष्ट राजा आहाब की पुत्री के उकसाने पर हुआ था। उसका असर यहूदा राज्य में कुछ समय तक रहा। अध्याय 21 पद 7, तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नाश करना ना चाहा। ये उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी और उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी न बुझेगा। उसके राज्यकाल में उसने केवल 8 वर्ष राज्य किया, परंतु जैसे ही उसने राज्य संभाला, सबसे पहले एदोमियों ने उसके प्रभुत्व से विद्रोह कर दिया और फिर लूबियों ने विद्रोह किया। अध्याय 21 पद 12 से लेकर 15 तक। तब एलिया नबी का एक पुत्र उसके पास आया कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो ना तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला और ना यहूदा के राजा आसा की लीक पर, वरन इसराइल के राजाओं की लीक पर चला है, और आहाब के घराने की नाई यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है, और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे घात किया है। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा पुत्रों स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा, और तू अंतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहां तक कि उस रोग के कारण तेरे अंतड़ियां प्रतिदिन निकलती जाएगी। तेरा कटोरा भर गया है, तू धीरे धीरे मरेगा। परमेश्वर उसकी दुष्टता के कारण उस पर रोग ला रहा था। उसकी मृत्यु तब हुई जब वो केवल 40 वर्ष का ही था। वो जवान था, परंतु अपनी दुष्टता के कारण मरा। यही संदेश एलिया नबी का था। कुछ लोगों को यहां तकलीफ होती है, क्योंकि यदि हम दूसरा राजा की पुस्तक में पीछे जाएं, ऐसा लगता है कि जब यहोशापात राज्य कर रहा था, एलिया नहीं था। एलिया मूल रूप से इसराइल का नबी था। उसने आहाब और इजबेल को उनकी दुष्टता के प्रति सचेत किया था, जिस कारण वो आहाब की आंख का कांटा बन गया। परंतु यदि हम राजाओं के वृत्तांत भाग 2 के अध्याय 2 में जाएं, जहां एलिया के अंत के बारे में लिखा है, वो अब वहां से दक्षिण राज्य में जाने वाला है। उसने क्रम अनुसार वृत्तांतों को नहीं लिखा। यहां पर हमें करीब 6 वर्ष का अंतर दिखता है, परंतु ये इसलिए हुआ कि उसने एलिया का अंत दूसरा राजा में क्रम अनुसार नहीं लिखा। अतः एलिया ने ताड़ना और न्याय का ये संदेश, जो उसकी बुराइयों के कारण यहोशापात के युग में आने वाला था, उस पर लिखा। अध्याय 21 पद 16 और 17। और यहोवा ने पिलिस्तियों को और कूशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा, और वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े, और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहां तक कि उसके लहुरे बेटे यहो आहास को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र ना रहा। इस तरह अरबियों और पलिस्तियों ने भी आक्रमण आरंभ कर दिया। मेरा मतलब है, राज्य बहुत जल्दी पतन हो गया और 8 वर्षों में नष्ट हो गया। एदोमी और लूबियों ने विद्रोह किया, और अब पलिस्तियों और अरबियों ने भी आकर जो कुछ था लूट ले गए। वे उसके पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, केवल यहो आहास के छोटे बेटे को छोड़कर। अध्याय 21 पद 18 और 19। इन सब के बाद यहोवा ने उसे अंतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया, और कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी, और वो अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। यहां एक विचित्र बात दिखाई दे रही है। अध्याय 21 पद 19 में आगे लिखा है, और उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था, वैसा उसके लिए कुछ न जलाया। ये समय विलाप करने का होता है, जब लोग विलाप करते और पूरी रात आग जलाकर जागते रहते थे, परंतु इसके लिए ऐसा ना किया गया। अध्याय 21 पद 20। वो जब राज्य करने लगा तब 32 वर्ष का था, और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा, और सबको अप्रिय होकर जाता रहा। एक दुष्ट मनुष्य की कहानी है। वो खाली चला गया, किसी ने उसके जाने पर विलाप नहीं किया, वो सबका अप्रिय होकर चला गया। अध्याय 21 पद 20 में आगे लिखा है, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं।